Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Shama Sundar Radhe Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Hare Krishna sab log kripya shanti banaye rakhe Hare Krishna please be peaceful Om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब भक्तों का ये सौभाग्य है कि हम यहाँ वृंदावन धाम में हैं। स्पेशली ये भी जो सप्ताह जो रहा राधाष्टमी से लेकर आज तक, पिछले 8 दिन बहुत ही पवित्र दिन रहे। राधाष्टमी तो पवित्र दिन है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद वामन द्वादशी, उसके बाद एकादशी और भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस, और कल नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस था। आपने सुना होगा यहाँ पर सीनियर भक्तों से। वृंदावन धाम में कुछ क्षण भी रहने को मिले तो ये बहुत विशेष सौभाग्य की बात होती है। सौभाग्य का मतलब क्या है? केलो सोचते सौभाग्य का मतलब एक नया इनोवा कार मिल जाए या एक रो हाउस मिल जाए चैतन्य विहार फेस 1 में, या कहते हैं सौभाग्य का मतलब है कि अच्छा परिवार जीवन मिल जाए। लेकिन रियल सौभाग्य है ब्रजवास मिलना। डबल फोन चल रहा है उनका, राधा रानी कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। यस, अगर आपका कॉल गोलोक जा रहा है तो आप अलाउड है। तो सौभाग्य का मतलब क्या है कि भक्ति में लगना। एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि क्या मेरी मदर का सौभाग्य है, तो मतलब आपके मदर, आपका मदर का सपरम सौभाग्य है, उनसे ही सारी भक्ति की प्राप्ति हो। सबसे बड़ा सौभाग्य है कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलना। उससे भी बड़ा सौभाग्य है वृंदावन धाम में रहकर कृष्ण भक्ति करना। उससे बड़ा सौभाग्य वृंदावन धाम में रहकर भक्ति करते हुए नाम जप करना, अर्च्य विग्रह का दर्शन करना। ये 5 आइटम्स चैतन्य आपको बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। मथुरावास, ब्रजमंडल में वास, श्रीमूर्ति रस सेवन, अर्च्य विग्रह की सेवा करना, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, और साधु संग और भागवत श्रवण। यहाँ पर रहने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। विग्रह का दर्शन सबने कर ही लिया, साधु संग, साधु सभी, साधु मतलब खाली भगवे कपड़े वाले साधु नहीं, पैंट शर्ट वाले भी साधु हो सकते हैं। जो भी भगवान का नाम ले रहा है सच्चे दिल से वो साधु है, जो राधा रानी की सेवा कर रहा है वो साधु है। तो साधु संग भी हो गया, नाम कीर्तन तो हो ही रहा है, प्रोग्राम से पहले एंड में कीर्तन, जपा कीर्तन, विग्रह सेवा हो गया, मथुरा वास हो गया, और क्या बचा, भागवत श्रवण हो ही रहा है। अरे यहाँ अच्छा है कि भागवत श्रवण पे कूपन भी मिल जाता है। ये बहुत अच्छा ट्रिक्स मैनेजमेंट ने यूज़ किया। मैं देख रहा हूँ इस बार से अटेंडेंस बहुत बढ़ रहा है हिंदी क्लास में, तो मैं सोचा था कारण क्या, आज मुझे इसका रहस्य पता चला है। यहाँ पे अंदर बांट रहे हैं। अच्छा, अभी पूना टेम्पल में कई बार हम क्या करते हैं, भागवतम क्लास का कूपन जो है बाहर बांटते हैं, तो लोग क्या करते हैं कूपन लेके चले जाते हैं और फिर प्रसाद के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ के मैनेजमेंट बहुत होशियार है कि अंदर ही बांट रहे हैं और वन वे एंट्री, यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते। तो पांचों अंग में से कोई भी अंग करें तो कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा अभी सौभाग्य है, मैं पिछले कुछ 8 दिन से आया हूँ, आज मुझे दिल्ली जाना है, फिर वहाँ से महाराष्ट्र। लेकिन जो भक्त यहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन सम वन नहीं, वृंदावन के समान वन नंदगांव सम गांव, यहाँ की जो धूल है उसकी अभिलाषा अनंत शेष भी कर दे, ब्रह्मा शिव जी भी ब्रज की धूल में लौटना चाहते। तो कितना हमारा सौभाग्य है, यहाँ की हवा भी, यहाँ की हवा भी शुद्ध करने वाली। एक बार मैं एक सन्यासी के साथ आ रहा था दिल्ली से, तो हम लोग आते हैं दिल्ली से, दिल्ली मतलब दिल्ली को फर्स्ट प्राइज मिला है, मालूम है वर्ल्ड में कितना सौभाग्य है दिल्ली वासियों का, पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन में नंबर वन दिल्ली है। भारत का कितना सौभाग्य है, उसमें दिल्ली परम सौभाग्य, और नंबर दो कलकत्ता है, हरे कृष्ण, और नंबर 14 पे मुंबई है, और बाकी सब शहर उतने भाग्यशाली नहीं है, फर्स्ट 100 में नहीं है। दिल्ली तो प्रदूषण की राजधानी है ना, तो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन वहाँ से हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो जब ब्रजमंडल पार हुआ होटल के बाद में, तो महाराज जी बोले कि आप अभी विंडो शील्ड ऊपर करिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं महाराज जी, तो पॉल्यूशन है बहुत, क्योंकि धूल आती है। मैंने बोले कि ये पॉल्यूशन नहीं है, ये ब्रज धाम का राधा श्याम सुंदर का महाप्रसाद है, जो ब्रज की जो हवा है वो भी शुद्ध करने वाली, ब्रज का पानी, ब्रज की धूल, ब्रज की वाणी। इवन रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं जो ब्रजवासी जो प्रजल्प कर रहे हैं वो भी दिव्य होते हैं, उस समय के ब्रजवासी। तो वी शुड ऑलवेज हैंकर प्रे टू राधा रानी, राधा रानी के चरणों में भीख मांगनी चाहिए। करुणा करो मई करुणा भरी ते सनक सनातन वर्णित चरी, और राधे वृंदावनेश्वरी करुणामयी दयामयी कृपामयी राधे, मेरे को श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम हो जाए, राधा श्याम सुंदर मेरे पर दया करो, मैं बहुत बद्ध जीव हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। अरे बच्चे को जब माता पिता के पास जाना है तो रोना लगता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमें रोना ही नहीं आ रहा, हम नाम जप करते हैं हमें रोना ही नहीं आ रहा, और यही नहीं हम पहचान ही नहीं पा रहे हमारे माता पिता कौन है, हम भूल गए कि राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण पिता है। तो चैंटिंग जो नाम जप का प्रोसेस है वो जागृतिकरण का है, जैसे किसी को एमनेशिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है, अपने रिश्तेदारों को भी रिकग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, तो उसको ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको फोटोज़ दिखाए जाते हैं अपने रिश्तेदारों के, धीरे धीरे वो पहचानता है कि अरे ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। ऐसे ही स्पिरिचुअली हम सब एक एमनेशिया स्टेट में हैं, अपने आप को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, और हमारा और भगवान का संबंध भूल गए हैं। तो ये हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम जप की जो विधि है ये आत्मा का जागृतिकरण है, अवेकन करने के लिए नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, मैं दीनबंधु प्रभु, सीनियर वाले नहीं, ये जूनियर महात्मा जो बैठे हैं सैफरन में ना, दीनबंधु प्रभु अगर सो रहे हैं उनको काफ़ी गहरी नींद आती है, मैंने देखा है ना, संगीत भी आता है नींद में ना। तो अगर मैं के सामने प्रभु जी को उठना है मंगल आरती, मैं एक पेपर में लिख के आता हूँ दीनबंधु प्रभु उठ जाओ 4 बज गए, तो शायद वो 9 बजे देखेंगे पेपर को, है ना, नींद नहीं खुलेगी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं कान में बोलता हूँ दीनबंधु प्रभु उठो उठो, तो तुरंत इनकी नींद खुल जाएगी। तो वाणी का प्रभाव है, शब्द ध्वनि जो है जागृतिकरण करता है शरीर का भी और आत्मा का भी। तो आत्मा का जागृति होता है ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो दिव्य ध्वनि है। जब हम ध्वनि में अपनी आत्मा को स्नान करा रहे हैं तो बहुत जागृत अवस्था में ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हर मोती पर ये सोचते हुए, तो परम पूज्य इंद्र प्रभु जी बोलते थे, जस्ट थिंक व्हेन यू आर चैंटिंग दैट दिस इज द लास्ट मंत्र ऑफ योर लाइफ। हर एक मोती पर सोचिए शायद ये लास्ट मंत्र होगा। फिर एक मंत्र अच्छे से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। और अगर जीवित रहे तो फिर अगला मंत्र बोलिए। एवरी मंत्र इज कैन बी लास्ट मंत्र। अभी हमारे यहाँ एक आदर्श उदाहरण है, परम पूज्य कदम कानन महाराज, जैसे आप जानते हैं कि राधा रानी की इच्छा से उनको कैंसर हो गया। डॉक्टरों का बोलना है कि वो शायद ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, कुछ महीने या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल। तो परसों मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो मुझे लगा कि शायद वो मैं जाके उनको सांत्वना दूंगा, लेकिन उनकी चेतना को देखकर लग रहा था कि वो मुझे सांत्वना दे रहा है। बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, वो बोल रहे थे ये तो भगवान का प्लान है, मेरा सौभाग्य है कि मैं राधा रानी के धाम में पहुँच गया। मैं उनको बोल रहा था कि आप कोई डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए, आयुर्वेदिक पूना में अच्छे डॉक्टर हैं, साउथ केरला में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ, फिर वो इंग्लिश से हिंदी में बोलने लगे, हिंदी भी आती है थोड़ा बहुत, यू नो टूटी फूटी जो भी है, तो बोलने लगे कि हिंदी में बोलने लगे कि हाँ अगर इफ आई गो टू पूना, पूना में गए तो डॉक्टर बोले हाँ 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 सब ठीक हो जाएगा बस। लेकिन मान लो मैं पूना में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और ट्रीटमेंट लेते लेते मृत्यु हो गई तो फिर तो मेरा चांस चला जाएगा। अगर वृंदावन में है तो वृंदावन में शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम अपने आप प्राप्ति हो जाती है। तो टू लिव इन वृंदावन टू डाई इन वृंदावन बहुत इज ग्लोरियस। वृंदावन में जन्म होना, वृंदावन में शरीर छोड़ना, तो इतना मुझे प्रेरणा मिली। मैं सोच रहा था मन ही मन, क्योंकि वो एक तारीख के दो तारीख की रात को आए यहाँ पर, चार तारीख को थी, और मैं भी दो तारीख के रात को आया और सुबह मंगल आरती में उनको देखा, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि अभी डॉक्टरों का बोलना है कि शायद कदम कानन महाराज ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, शायद एक साल या थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि उनके पहले मेरा समय आ जाए। ये जो वेटिंग लिस्ट है वो पता नहीं, कभी कभी VIP कोटा में जल्दी कन्फर्म हो जाता है। हमें लगता है पहले वेटिंग लिस्ट से RAC होगा, RAC मतलब बुढ़ापा हो गया, मतलब RAC हो गया है ना, और कन्फर्म मतलब ऊपर पहुँच गए है ना। तो पता नहीं किसका पहले टिकट कन्फर्म होगा। नहीं आप लोग लगता हो कि प्रभु जी आपका 60 हो गया टाइम है, मैं तो 25 वर्ष का हूँ। हाँ या पवन प्रभु आपका उम्र कितना है? पद्मा 40 है। तो प्रभु मुझे बोल रहे थे मेरा तो 40 है, प्लस मैं च्यवनप्राश रोज खाता हूँ। मैंने बोला आप डाबर, पातंजलि और क्या होता है झंडू, तीनों मिक्स करके खाओ तो भी मृत्यु निश्चित है। च्यवनप्राश बनाया किसने? च्यवन ऋषि ने। और च्यवन ऋषि कहाँ है अभी? वो भी चले गए। तो क्या गारंटी है लाइफ का? एक ही चीज सर्टन है कि डेथ विल कम। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति कलकत्ता में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरी मृत्यु आ रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, मुझे एक साल और दे दो। उस समय के 10 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर। डॉक्टर बोले मैं 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दे सकता। तो कदम कानन महाराज से मुझे प्रेरणा मिली। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को भी ये सौभाग्य हो कि अंतिम समय वृंदावन धाम में आए, राधा रानी को श्याम सुंदर को याद करते हुए शरीर छोड़ें। एग्जाम तो कंपलसरी है, जैसे मैं जो कॉलेज में पढ़ता था ना, कभी कभी हम टीचर के पास जाके मिल के एग्जाम को कैंसिल करा देते थे या पोस्टपोन करा देते थे। लेकिन यहाँ पर पोस्टपोन नहीं हो सकता। आप यमदूत हो या विष्णुदूत हो, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। आप उनको महाप्रसाद दोगे तो और जल्दी आ जाएंगे। तो जो होना है वो स्वीकार करना, यू टू जस्ट बी रेडी। जस्ट राधा रानी जब पुकारे, राधा रानी जब हमको बुलाएंगे चलो, तो हमें कुछ बोलना नहीं है कि नहीं मुझे यहीं रहना है, बस हे राधे हे श्याम सुंदर मुझे अपने चरणों में स्थान दो। इस भावना से अंतिम समय में ये महामंत्र पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे फाइनल एग्जाम कितना अच्छा है कि उसका आंसर पहले ही बता दिया गया है। नहीं, ऐसे पेपर बहुत कम होते हैं, इसमें आंसर पहले से ही बता दिए। ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक में भी देखना पड़ता है कि कई बार लोग ओपन बुक मतलब किताब खोल के आंसर लिखना, लेकिन कुछ कुछ महात्मा ऐसे होते हैं ओपन बुक एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कहाँ पर आंसर है। लेकिन ये जो राधा श्याम सुंदर जो एग्जाम लेने वाले हैं हमारा, उसका आंसर भी पहले से बताया गया, आंसर खाली 16 नाम लिखने हैं बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो अंत समय में बोलने की शक्ति नहीं आती। कृष्ण त्वदीय पद पंजरंतम अद्देव विशत मानस राज हंस प्राण प्रणाय समय कफवात पित्त कंठावरोधन। जब प्राण छूटने का समय आएगा तो पता नहीं क्या होगी, तब वात पित्त कफ सब इम्बैलेंस हो जाते। इसीलिए वो बोलते अब जो मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा मन जैसे कमल के फूल में, कमल के डंडी में राज हंस प्रवेश करता है, वैसे मेरा मन राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रवेश कर अंत समय में भगवान को याद कर सकते। तो ऑफकोर्स कदम कान महाराज को प्रार्थना की जरूरत नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको कष्ट नहीं हो। राइट, फाइनल स्टेज में कष्ट बहुत होता है बॉडी में, ट्यूमर्स अभी 80 ट्यूमर्स हो गए हैं बॉडी में, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। हमें तो अगर बाई चांस 102 टेम्परेचर होता है तो हमारा जेब बंद हो जाता है, चलो कल कर लेंगे कीर्तन या सदा हरि, लेकिन इतनी चेतना में भी वो कीर्तन लीड कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भक्तों को ले जा रहे हैं, ग्लोरियस। और आज का दिन इसलिए स्पेशल है, आज सन्यास का दिन है। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास लिया, और आज के दिन हमारे फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने आज के दिन ये सन्यास लिया। और आज के दिन आप सब भी सन्यास ले लीजिए। सन्यास का मतलब खाली ये नहीं है कि भगवे कपड़े धारण करना या दंडा लेना। एक माता जी भी, एक छोटा बच्चा भी सन्यास ले सकते हैं। सन्यास का मतलब क्या है, महाप्रभु बोलते हैं सन्यास का मतलब है मन वचन और शरीर तीनों भगवान की सेवा में अर्पण कर, त्रिदंडी बोलते हैं। एक बार आई थिंक, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई सन्यासी, शायद लोकनाथ महाराज या कोई सन्यासी बोल रहे थे, BMW मिलता है, बॉडी माइंड वर्ड, भगवान की सेवा में सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर। तो आज के दिन हमें भी सोचना चाहिए, मैं चाहे पुरुष शरीर में हूँ, स्त्री शरीर में हूँ, गृहस्थ हूँ या ब्रह्मचारी हूँ या मध्यस्थ हूँ, है ना, मैं जिस भी आश्रम में हूँ मुझे सन्यासी बनना है, मतलब शरीर मन वचन सब भगवान को अर्पण कर। महाप्रभु से पूछा था रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मैंने सन्यास तो ले लिया लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, और महाप्रभु बोले भाल न खाई व भाल न पोरी। ज़्यादा अच्छा प्रसाद नहीं खाना, बस कभी कभी ठीक है, कोई फीस्ट होता है, जैसे परसों फीस्ट था भक्ति विनोद ठाकुर का, तो स्पेशल आइटम्स होते हैं, लेकिन जनरली भक्त को बहुत सिंपल खाना चाहिए। और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बताते हैं अगर आप सरल प्रसाद खाओगे तो लंबी आयु रहेगी। भगवान ने ऐसे अरेंज किया है जितना आप इंद्रिय तृप्ति करोगे उतना शरीर को हानि होगी। ऐसे कोई व्यक्ति इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, तो उसका हेल्थ अच्छा रहता है। ऐसे भोजन भी जितना आप फ्राइड चीज़ खाते हैं या टेस्टी चीज़ खाते हैं तो उतना ही शरीर को हानि होती है। जैसे महाप्रभु बोलते हैं भाला ना खाई, ज़्यादा टेस्टी नहीं खाना, मतलब चावल दाल सब जैसे हमारे कृष्णा हॉल में होता है वो आदर्श प्रसाद है ना। और फिर बोलते हैं भाला ना पोरी, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनना, शरीर को ढकना ही है। नहीं, शरीर तो सब हड्डी मांस का बना है, उसमें बहुत कम लोगों के शरीर में कमल के फूल की सुगंध आती है, ठीक है। शरीर में 9 होल हैं, सबसे गंदगी निकलती है नीचे से, तो बहुत ही गंदा, नाक से भी है ना, सब गंदगी निकल रही है, और उसको ढकना है खाली। अभी ढकना ही है तो सजाना क्या, उसमें बॉडी को कवर करना चाहिए, सिंपल है। वो पैसे अगर हम कम सिंपल वस्त्र पहनते हैं, वो पैसे से हम राधा श्याम सुंदर की सेवा ज़्यादा कर सकते, उनके लिए ज़्यादा ड्रेसेस बना सकते। तो भाला न पूरी भाई, सिंपल रहना। और ग्राम्य वार्ता न कही, ग्राम्य कथा न, संसारी बातचीत, पॉलिटिक्स, भक्तों में दोष देखना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ग्राम्य कथा न कही ब न सुनी ब, बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी मैं तो नहीं बोलता लेकिन ये सीनियर डिवोटी बोल रहे थे, मैं नम्रता से सुन रहा था। चाहे सीनियर हो जूनियर, कोई अगर प्रजल्प कर रहा है तो उसको आदरपूर्वक प्रणाम करके दूर जाना अच्छा है, क्योंकि ये हमारी भक्ति के लिए घातक हो, स्पेशली वैष्णव निंदा। आज की कथा में हम देखेंगे ये विश्वरूप संन्यास लेते हैं तो उनकी माता शची माता अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध कर देते हैं न जानते हुए, उसके कारण उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। महाप्रभु की मदर चैतन्य महाप्रभु की माँ शची माता को भी कृष्ण प्रेम तब तक नहीं मिलता जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते अद्वैत आचार्य से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन को ऐसे बिताना चाहिए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन बिताए। और महाप्रभु आगे बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है सन्यासी के लिए, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा। स्वयं को घास के तिनके से भी तुच्छ मानना, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनना। घास के तिनके पे लोग पैर देते हैं, थूक दे देते हैं, पेशाब कर देते हैं, घास का तिनका कभी कोई कोर्ट केस नहीं फाइल करता है ना, अपने वो स्वीकार कर लेते। और तरोर व सहिष्णु, जैसे हरिदास ठाकुर, कल आपने सुना होगा हरिदास ठाकुर की कहानी, हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में पीटा गया फिर भी उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। और भगवान उनकी रक्षा के लिए चक्र को भेजते हैं लेकिन हरिदास ठाकुर चक्र को भी वापस भेज देते। तो इसके अंदर नम्रता सहनशीलता है और अमानीना मान देना, जो स्वयं मान की इच्छा नहीं कर रहे दूसरों को मान दे रहे वो रियल सन्यासी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गृहस्थ भी सन्यासी बन सकते हैं अगर वो अपने किसी भी आश्रम में रहें, अगर वो ये श्लोक को फॉलो करते हैं त्रिनादपि सुनिचे, सबको आदर देना, स्वयं आदर की इच्छा नहीं करना, तो सन्यासी। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन सन्यासी से ज़्यादा सेवा करते थे। रोज 64 माला जप करना, किताबें लिखना और नामहट्ट प्रचार करना। तो जो भी कोई भक्त है भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं और पूरा समय फूल माला बनाने में लगे हैं वो भी सन्यासी के समान, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। तो विश्वरूप के सन्यास की लीला हम पढ़ेंगे सुनेंगे और साथ साथ प्रभुपाद का भी सन्यास लीला। प्रभुपाद जी की सन्यास लीला एक्चुअली प्रभुपाद से शुरू करेंगे क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य। आज के दिन प्रभुपाद जी ने 1959 में केशव जी गौड़ीय मठ, यहाँ से पास में है मथुरा में, वहाँ पर प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया। उनके सन्यास गुरु श्रील भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज जो कि गुरु भाई थे। और प्रभुपाद लीलामृत में कथा आती है कि कैसे प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिली सन्यास लेने के लिए। श्रील प्रभुपाद जैसे आप जानते हैं पहली बार अपने गुरुदेव से मिले 1922 में, आज 100 साल हो रहे हैं, अभी 2022 है, 1922 में मिले। और उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर अलग अलग प्लैनेट से ड्यूटी जा रहे हैं हरी के हो आए के हो जाए के हो नाचे के हो गए, है ना हरी। तो श्रील प्रभुपाद उनके जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले, प्रभुपाद बोल रहे थे मुझे नहीं मिलना कोई साधु से, बहुत सारे ढोंगे साधु देखे हैं मैंने, लेकिन नरेंद्र मल्लिक बोले ये बहुत अच्छे साधु हैं। तो प्रभुपाद को लेके गए और प्रभुपाद ने प्रणाम किया उल्टाडंग जंक्शन जो स्थान आज अभी इस्कॉन के मैनेजमेंट में आया है। जैसे ही प्रणाम किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले आप एक सुशिक्षित नौजवान हो, आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें। तो प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ ये पहली बार मिल रहे हैं, जानना पहचान तू मेरा मेहमान है ना, पहली बार में ही वो मेरे को इतना लाइफ टाइम मिशन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने विरोध किया कि हमारा देश गुलाम है, पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार को खदेड़ देना है, उसके बाद ही हम प्रचार की या भक्ति की बात कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत स्ट्रांग थे, बोले ये पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती रहती है, कृष्ण भावना का प्रचार एक अर्जेंसी है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी पावर में है। दुनिया की वास्तविक समस्या आज़ादी नहीं है, वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इससे मुक्त होने के लिए कृष्ण भावना का प्रचार करना। अब प्रभुपाद उस समय गांधी जी के फॉलोअर थे, प्रभुपाद जी गांधी जी को फॉलो कर रहे थे उस समय, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने थोड़े समय विरोध किया। लेकिन अंत में प्रभुपाद जी बोले आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड, मेरे गुरुदेव ने मुझे पराजित कर दिया। गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी का वार्तालाप होता है, डिबेट होता है, और चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े पंडित थे कि उन्होंने दिग्विजय केशव कश्मीरी की धज्जियाँ उड़ा दी। आप कहो ना दिग्विजय केशव कश्मीरी, धज्जियाँ उड़ाना मतलब एकदम क्या बोले, भजिया नहीं, भजिया अलग होता है, धज्जियाँ मतलब रुई के जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के सामने पराजय स्वीकार कर, क्योंकि शिष्य का रोल है गुरु के सामने हार मान। इतना प्रभुपाद जी ने हार मान ली खुशी से। अब प्रभुपाद उस समय से निश्चय कर लिए कि मैं इनसे दीक्षा लूँगा और यही मेरा मिशन है लाइफ का। लेकिन प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, उनके दो संतान थे ऑलरेडी उस समय, अब उनको जॉब बिजनेस करना था, लेकिन मन से वो प्रभुपाद भक्तिधन ठाकुर के मिशन में सहायता करना चाहते। 1933 में हमेशा प्रभुपाद सुनने जाते थे। एक बार तो यहाँ कोसी में जब ब्रजमंडल परिक्रमा थी तो भक्ति से दान ठाकुर प्रवचन करने वाले थे, अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पर गुरुदेव प्रवचन करेंगे, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं, नहीं तो पास में एक शेषशाही मंदिर है उसको दर्शन के लिए जाना है, दर्शन के लिए जा सकते। तो अधिकतर लोग दर्शन के लिए चले गए क्योंकि एक्साइटिंग लगता है, नए विग्रह नए मंदिर। लेकिन प्रभुपाद जी बोले मैं सुनने बैठ गया कि मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं तो मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि वास्तव में डीटीस का दर्शन आंखों से नहीं होता है, कानों से होता है। जब कानों में हरि कथा सुनते हैं तब भगवान के विग्रह के दर्शन करने की योग्यता आती है। तो जब उनके दीक्षा का समय आया 1933 में, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे प्रयाग के, अतुलानंद ब्रह्मचारी ने प्रपोज किया कि अभय बाबू हैं ये आपसे दीक्षा लेना चाहते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तुरंत बोले यस आई हैव नोटेड हिम, ही लाइक्स टू हियर, ही डज नॉट गो अवे, उनको अच्छा लगता है श्रवण करना। और भक्ति ठाकुर उनको दीक्षा प्रदान की। और प्रभुपाद हमेशा सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरे गुरु भाई हैं वो तो इतने बड़े कार्य कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो लेटर लिखा भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, जस्ट प्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर तिरोभाव के कुछ समय पहले, कि मेरे गुरु भाई इतने इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो भक्ति ठाकुर ने बताया वही कि आप चैतन्य महाप्रभु का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करो, और एक बार एक और इंस्ट्रक्शन दे राधा कुंड में, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो पुस्तक छापो, पुस्तक वितरण की सेवा पे जोड़ दिया प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। कुछ भक्तों ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोला जब प्रभुपाद मुंबई में भी थे कुछ समय, कि अभय बाबू बहुत अच्छे हैं, इनको मंदिर का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले जो ये कर रहे हैं वही ठीक है, समय आने पर ये सब कुछ करेंगे। मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मालूम था कि प्रभुपाद जी का क्या भविष्य है, और वो वेट कर रहे थे कि कैसे मिशन को आगे बढ़ाए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के तिरोभाव के बाद प्रभुपाद फिर भी और सक्रियशील थे। प्रयाग में उनकी दुकान थी फार्मेसी की, लेकिन उनका मन हमेशा प्रचार में था, आने वाले ब्रह्मचारी सन्यासियों की सेवा करते थे। अब प्रभुपाद के पास दुकान थी तो प्रभुपाद के गुरु भाई डॉक्टर ओबीएल कपूर एक बार दुकान में मिलने गए, बोला बाबू कैसा चल रहा है आपका दुकान। प्रभुपाद बोले ये दवाई तो मैं अभी के लिए बांट रहा हूँ, लेकिन कुछ साल बाद मैं वो दवाई बांटूंगा जिस दवाई को लेने से कोई और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वो दवाई है महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। फिर प्रभुपाद जी बोले लेकिन ये दवाई को लेने के लिए पहले और एक दवाई लेनी होती है, तो ना कई बार दवाई लेने से पहले और एक दवाई लेनी होती है, वो दवाई है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तन। प्रभुपाद ये फॉर्मूला है दवाइयों का, ना एक नुस्खा होता है, एक फॉर्मूला होता है, सबको नहीं बताया जाता। तो हरि नाम लेने के लिए भी पहले क्वालिफिकेशन है त्रिनादपि समझ। फिर प्रभुपाद जी कुछ समय बाद प्रभुपाद ने बहुत ट्राई किया, उनके बिजनेस फेल होने लग गए, जब सब कोई फैक्ट्रीज में आग लग गई। अब प्रभुपाद तब एक श्लोक याद करने लगे, कौन सा श्लोक याद किया उन्होंने, भागवत का, यस्याहम अनुग्रहामि हरिषे तद धनम शनय। भगवान बोलते हैं जिसमें मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, फिर मैं रिश्तेदारों के पास जाता है वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अंत में फिर वो मेरे चरणों में गिर। ये पॉइंट मैं एक बार लेक्चर में पुणे में एक फैक्ट्री में लेक्चर था, कुछ नए इंजीनियर्स थे, एमटेक ट्रेनिंग इंजीनियर्स, मैंने लेक्चर में बताया उनको कि भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। और रोज़ हम लोग लेक्चर के बाद कीर्तन में बोलते थे भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करो। तो उस दिन एक डिवोटी जो है वो आए नहीं कीर्तन में, मैं उनसे मिलने गया, बोले क्या क्या बात है? बोले प्रभु जी आपने लेक्चर में बताया भगवान विशेष कृपा करते हैं सब कुछ छीन लेते हैं, तो फिर क्या मेरा भी ऐसा ही होगा? इतनी मेहनत से मैंने एमटेक डिग्री प्राप्त की है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, विशेष कृपा है, अभी आपको नहीं मिलेगी, अभी खाली कृपा मिलेगी। भगवान भी कृपा करते हैं भक्त की लायकता देखकर, उस स्टैंडर्ड को देखकर। तो प्रभुपाद के साथ भगवान ने इतनी परीक्षा ली, प्रभुपाद के कोई नहीं रहा, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई पैसा नहीं। अब प्रभुपाद फिर अंत में वृंदावन में आए, वृंदावन में रहने लगे, बंसी गोपाल मंदिर में, राधा मोदर मंदिर में। फिर अचानक प्रभुपाद जी को स्वप्न आने लगे 1959 के आसपास। उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सपनों में आके बोल रहे थे, अबे बाबू आपको संन्यास लेना होगा। तो रात तो भक्ति ठाकुर सोचे थे, अरे ये क्या है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल नहीं, हरी बोल मतलब भयानक, अभी तो मेरे बच्चों का व्यवहार नहीं हुआ। रूपा जी के 5 संतान थे, तो अब मुझे बिजनेस, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं, पुस्तक छापना है। तो लेकिन फिर दूसरी बार सपने में आए, अबे बाबू उठो संन्यास लो। तो प्रभुपाद सोचने लगे अभी क्या किया जाए, मेरे गुरु महाराज क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर उनको उनके सारे बिजनेस फेल हो रहे थे और वो श्लोक याद कर रहे थे, यस्याहम अनुग्रहामि। और फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कुंती महारानी बोलती हैं कि जिसका ऊंचे परिवार में जन्म हुआ है वो मेरे को नहीं याद कर सकता। फिर तीसरी बार उनको सपना आया, वो बार बार भक्तिनाथ ठाकुर प्रकट हुए और बोल रहे थे चलो संन्यास लो संन्यास लो। तो भक्तिनाथ ठाकुर के वाचन को सीरियसली लेकर प्रभुपाद अपने गुरु भाई से मिलने गए, भक्ति विलास तीर्थ महाराज। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे को किताबें छापनी है, संन्यास लेने हैं। तो वहाँ से ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, बोले पहले आप हमारे मठ में आके रहो, कुछ साल हम आपकी परीक्षा लेंगे, फिर हम देखेंगे आपको संन्यास देना है कि नहीं देना है। फिर प्रभुपाद सोचने लगे कि मेरा तो काम प्रचार करना है, मैं कहाँ मठ में बैठ के रहूँगा। तो फिर प्रभुपाद जी के और एक गुरु भाई हैं भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज, और भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज को जब उन्होंने बताया कि ऐसे गुरु महाराज स्वप्न में आ रहे हैं, तो भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज बोले, अभय बाबू बिना संन्यास लिए कोई व्यक्ति प्रचारक नहीं बन सकता, आपको संन्यास लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है। और आज के दिन भद्र पूर्णिमा जी है ना, भद्र पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद जी ने निश्चय किया संन्यास लेने के लिए। 2 डिवोटी थे, एक साथ संन्यास हुआ, एक का नाम हो गया मुनि महाराज और एक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो केशव जी गौड़िया मठ आज भी है। इंटरेस्टिंग, केशव जी गौड़िया मठ में जो विग्रह हैं वो शिला प्रभुपाद जी ने दान किए थे उस मठ के लिए। और वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह, राधा विनोद बिहारी और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह जो है प्रभुपाद जी ने उस मठ में दान किए थे। तो प्रभुपाद जब ये तारीख थी 17 सितंबर 1959, यानी आज कितने साल हो गए, 63 साल, 63 ईयर्स बैक प्रभुपाद जी संन्यास के लिए तैयार हुए। और परम पूज्य नारायण महाराज, भक्तिवेदांत नारायण महाराज, वो प्रीस्ट यज्ञ करने में सहायता कर रहे थे, और संन्यास गुरु थे श्रील भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज। और प्रभुपाद जी के एक बहुत सुंदर गाने वाले गुरु भाई थे, बहुत सुंदर आवाज़ में गाते थे, कौन थे वो किसी को मालूम है, जो कीर्तन कर रहे थे उस दिन, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। बहुत इंटरेस्टिंग महान भक्त रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज को उन्होंने मृदंग बजाना सिखाया था, कई भक्तों को प्रेरणा दी थी। अब बाबा अकेले नहीं था, बाबा जी महाराज का एक गुण था कि हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहे, कोई प्रॉब्लम लेके आए ना बोलते रहे हरे कृष्ण। और वो तरसते थे कि एकादशी कब आएगी, जब मैं पूरा दिन जप करते यमुना किनारे इमली तला के पास। हमारे यहाँ कई लोग द्वादशी के लिए तरसते हैं कि द्वादशी कभी आएगी। तो अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज को प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया कि आप कीर्तन लीड करो। और जब संन्यास सेरेमनी हो रहा था तो वो कीर्तन गा रहे थे बहुत मधुर स्वर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। उतने में जो यज्ञ कर रहे थे उसका डिस्टर्ब होने लगा, धीरे धीरे कीर्तन की आवाज़ थोड़ी कम करो। तो उन्होंने कीर्तन की आवाज़ कम की, जैसे आवाज़ कम हुई स्वाहा स्वाहा, प्रभुपाद धीरे से बोले जोर से गाओ जोर से गाओ। वो जोर से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अब फिर से उनको बोला धीरे गाओ, प्रभुपाद बोले जोर से गाओ। अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज बहुत एग्जॉल्टेड परमहंस वैष्णव, वो कहने लगे उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि यही वो महात्मा हैं, ये वो महापुरुष हैं जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को हर देश हर शहर और हर गांव में वितरित करेंगे। पृथ्वीते आचे यात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोरना। सारे साधु संत गौड़िया सोचते थे कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को पूरा करेंगे। लेकिन अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज ने पहचान लिया, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के अंदर नाम में श्रद्धा थी। प्रभुपाद के कई गुरु भाई थे, उनके उनका स्कॉलरली ज्ञान ज़्यादा था, प्रभुपाद से भी ज़्यादा था। और हम कंपेयर नहीं करते, वो भी महापुरुष हैं, वो भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का नाम में बहुत श्रद्धा थी। प्रभुपाद अपनी प्रार्थना में लिखते हैं, बोड़ो कृपा कोइनो कृष्ण अधमेर प्रति। ये प्रभुपाद अमेरिका में जा रहे थे, कविता लिखी, कृष्ण आपने इस अधम पर इतनी कृपा की, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, भक्ति नाही भेद नाही, भक्ति नाही भेद नाही, नामे खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मुझे नाम में श्रद्धा है। प्रभुपाद जी को इस श्लोक पर पूरा विश्वास था, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्य। ये कंप्लीट फेथ थी, इसीलिए प्रभुपाद जी को इतनी दिव्य शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह हरि नाम का प्रचार कर सके। तो संन्यास लेने के बाद उनको नाम दिया गया भक्ति वेदांत स्वामी। और एक बहुत फेमस फोटो है, आपने देखा, उनके गुरुजी बैठे हुए हैं और एक तरफ प्रभुपाद खड़े हैं और एक तरफ मुनि महाराज हैं, दोनों बहुत गंभीर हैं, हाथ में डंडा है। और इसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने निश्चय किया कि अब मुझे प्रचार करने के लिए जाना होगा विदेश में। उनके पास कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद का कुछ भी नहीं था। एक मित्र मिले अग्रवाल, वो बोले एक बात करते करते, मेरा बेटा गोपाल अग्रवाल वो अमेरिका में गया पढ़ाई करने के लिए और एक अमेरिकन स्त्री ने उसको फंसा दिया मतलब समझ गया, फिर बाद में उसके शादी हो गया वहाँ पर। तो वो तो बता रहा, दुख से बता रहा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन प्रभुपाद ने उसमें एक पॉइंट निकाला, आपका बेटा अमेरिका में है, उसको बोलो मेरा वीज़ा अरेंज करें। प्रभुपाद इतने होशियार थे कि हर एक चीज़ में अच्छाई देखते थे। तो फिर उन्होंने गोपाल अग्रवाल ने वीज़ा का अरेंजमेंट किया, उनके वाइफ सैली अग्रवाल वो तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। और प्रभुपाद जब वीज़ा तो अरेंज हो गया, लेकिन अब जाने के लिए टिकट नहीं, इतना पैसा नहीं कि हवाई जहाज से जा सके। तब प्रभुपाद को पता चला एक माता जी सुमती मोराड जी, जिनका इस समुद्र के जो जहाज है उसका बिजनेस है, सिंधिया स्टीम शिप कंपनी। तो प्रभुपाद बस उनके पास जीव में उनके ऑफिस में चले गए और बोले मुझे टिकट चाहिए। पहले तो कई बार मिल नहीं सके, दरवाजे पे ही बैठे रहे। सोचिए इतने बड़े महात्मा महाभागवत एक एक बिजनेस लेडी के पास जाके भिखारी की तरह भिक्षा मांगना, ये प्रभुपाद जी की महानता है कि प्रभुपाद जी त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देन कीर्ति, ये प्रभुपाद जी का महान गुण है, इसी कारण उनके अंदर इतनी शक्ति है। तो सुमति मुराद जी बोले, देखो स्वामी जी आप ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो, 70 साल उम्र हो गई है, अमेरिका में तो खाने को भी कुछ मिलेगा, ठंडी बहुत होती है, आप जाओगे मर जाओगे, सीधा ही बोला। फिर प्रभुपाद डिटरमिंट थे, बोले बस आप टिकट दो। मन में प्रभुपाद सोच रहे थे मारने वाले जियाने वाले राधा रानी है ना, आप कौन है डिसाइड करने वाले। फिर फाइनली सुमति मुरार जी ने उनको कार्गो शिप में भेजा। अभी देखिए भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि प्रभुपाद के लिए एक स्पेशल फ्लाइट होना चाहिए न्यूयॉर्क जाने के लिए, कम से कम प्लेन में बिजनेस क्लास होना चाहिए। मैं भी जब अमेरिका में गया 40 साल पहले तो एक एयरलाइन का अच्छी एयरलाइन से गया। अब प्रभुपाद जी को क्यों नहीं ऐसे भगवान ने अरेंज किया? भगवान प्रभुपाद जी की महिमा को दुनिया को बचाना चाहते थे कि मेरे भक्त मेरी सेवा के लिए किसी भी कष्ट को गुजरने के तैयार है। उनको 35 दिन से भी ज्यादा लगे समुद्र जहाज में, कितना कष्ट उठाना पड़ा, हार्ट अटैक, सी सिकनेस, वॉमिटिंग, सब तकलीफें सहन की। भगवान स्वयं आए सारे अवतारों के साथ प्रभुपाद जी को गले लगाने के। अब इतने सब तकलीफ उठाने के बाद वो एक नए देश में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, ये प्रभुपाद जी की महानता है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को सीरियसली लिया, जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है या तारा ही देश, जिससे भी मिलो हरि नाम। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद जब पहुंचे उनको पता नहीं था, अभी समुद्र में यात्रा करना भी आसान नहीं है क्योंकि समुद्र में ऐसे अभी ट्रेन में तो कम से कम स्टेशन आता है बीच में उतर सकते हैं, समुद्र में तो आप नीचे उतरे तो उतर ही जाओगे, आपको मछलियां स्वागत करने के लिए होंगे। 2-3 जगह बीच में रुके, सिलोन में रुके प्रभुपाद जी, थोड़ा बाहर निकले और भी एक जगह पे, लेकिन बेसिकली समुद्र की यात्रा बहुत कठिनाई होती है। और कार्गो शिप मतलब माल जहाज, कोई माल जहाज में जाना नहीं चाहेगा, लेकिन प्रभुपाद दिखाते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन है, आप मेरे पीछे बोलिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी है, तोमार सेवा ते जेई ते दुख से ही तो परम सुख। इसका अर्थ समझ में आ गया कि हे भगवान आपकी सेवा में जितने कष्ट हैं दुख हैं वही मेरे लिए परम सुख। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, पता नहीं लेफ्ट जाने राइट जाने, फिर गोपाल अग्रवाल सैली अग्रवाल के यहाँ पे रुके, उनके रेफ्रिजरेटर में मांस पड़ा है। आप सोचिए कोई भी ब्रह्मचारी भी गृहस्थ भी कभी किसी घर में रुकना नहीं चाहेगा जहाँ पे नॉनवेज रखा है, उनको फ्रिज में नॉनवेज रखा है, एक जगह पे नॉनवेज रखा है ऊपर सब्जियां रखे। प्रभुपाद जी रुके रहे सहन करते रहे और फिर धीरे धीरे इतनी सुंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। ये प्रभुपाद जी के त्याग और उनके वैराग्य और उनके भक्ति का प्रभाव है कि आज विश्व में सब लोग इस्कॉन के माध्यम से महामंत्र गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति आज के दिन अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं कि हम, मैं सबसे थोड़ा सा एक प्रभुपाद जी के लिए एक डोनेशन मांगूंगा, आप लोग देंगे डोनेशन? बोलिए हरि बोल। आप बोलोगे प्रभु जी ऑलरेडी जन्माष्टमी में डोनेशन दे दिया, ये करेंसी रिजर्व बैंक के नकली नोट नहीं मांग रहा मैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज प्रभुपाद की खुशी के लिए हम सब कम से कम 2 माला एक्स्ट्रा जप करें हर रोज, हरि बोल, 2 नहीं तो 1, हर साल एक एक माला बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छे हैं। नहीं जैसे आप में से कितने लोग हैं जॉब करते हैं नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं? 10 साल? 10 साल तो 10 साल पहले जो सैलरी थी अभी है वो 1 है कि बढ़ गया? बढ़ गया। जैसे अब इस्कॉन में शुरुआत में 16 माला शुरू किया, अभी कितने साल हो गए आपको सुशील गौर प्रभु? 15 साल। तो भी वही सैलरी मत रखो, बढ़ाओ भी, भगवान की तनख्वाह बढ़ा। तो कितने वक्त देंगे डोनेशन? बोलो हरि बोल। अभी आवाज़ कम हो गई, पहले ज़्यादा थी। आपको लग रहा होगा कृष्ण को मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, हर साल एक एक माला बढ़ाओगे ना तो मुश्किल भी नहीं होगा। एक साथ 32 माला 64 करना मुश्किल है, लेकिन एक एक जैसे वेट लिफ्टिंग होता है ना, पहले 2 किलो उठाया, फिर 5 किलो, फिर 20 किलो, फिर 50 किलो, जैसे भक्त को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मूवमेंट बनाया इसलिए कि हम हरि नाम ले सके। प्रभुपाद ने संन्यास इसीलिए लिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया? ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का पत्नी से झगड़ा हो गया, बोले चलो मैं जा रहा हूँ। नहीं, कई बार घर में होता है झगड़ा होता है, जाते हैं फिर बस स्टैंड से लौट के आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कोई झगड़ा नहीं था, चैतन्य महाप्रभु का झगड़ा नहीं था। उनकी वाइफ विष्णुप्रिया परम सुंदरी और परम बहुत वफादार थी। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास इसीलिए लिया बद्ध जीवों को हरि नाम लेने के लिए। और आज हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं विश्वरूप की। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बहुत सुंदर थे, आकर्षक, और कृष्ण कथा में लीन रहते थे। ये नित्यानंद प्रभु के एक्सपांशन है बलराम जी के। और विश्वरूप रोज सुबह घर से उठ के जाते थे कृष्ण कथा सुनने के लिए और करने के लिए। किसके घर में जाते हैं? अद्वैत आचार्य। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अद्वैत आचार्य के साथ बैठकर बहुत देर तक कृष्ण कथा करते, और जब विश्वरूप बोलने लगते तो सबके मन को आकर्षित करते। और उस समय छछी माता दोपहर का प्रसाद बनाती और फिर नीमाई को बोलते, नीमाई जाओ अपने बड़े भाई को बुला कर ले आओ, प्रसाद तैयार है। अनिमाई जो गौर सुंदर है, जो श्याम सुंदर से अभिन्न है, खाली वर्ण अलग है। जब नीमाई प्रवेश करते तो कीर्तन रुक जाता, कथा रुक जाती और सब नीमाई को अवलोकन करते, बिल्कुल नॉन स्टॉप अनिमिश्चित तरह से प्रयास करते, देखते ही रहे। और फिर नीमाई अपने भाई की धोती पकड़ते, चलो चलो भैया चलो, प्रसाद तैयार है। और विश्वरूप वापस आते, प्रसाद लेके फिर भाग जाते कथा के। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रसाद मतलब कथा का अंत हो गया, फिर नहीं अगले दिन से कुछ। लेकिन विश्वरूप इतने मग्न होते कथा में, और उनके माता पिता सोचने लगे कि हमारा बेटा ज़्यादा ही कृष्ण भक्ति है, ज़्यादा ही प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं वो इस्कॉन में फुल टाइम ज्वाइन हो जाए। उनको डर लग रहा था कि वो सन्यासी बन जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे सोचा। एक्चुअली एक और पॉइंट बताना भूल गया कि जब विश्वरूप जब कथा करते थे तो वो हमेशा शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन करते थे। और अद्वैत आचार्य, जब अद्वैत आचार्य विश्वरूप की कथा को सुनते, विश्वरूप तो उम्र में छोटे हैं, अद्वैत आचार्य उनके 50 साल ज़्यादा बड़े उम्र के हैं, और विश्वरूप उनकी कथा सुनकर जोर से गरजते थे। विश्व अद्वैत आचार्य शिव जी के अवतार हैं, सदाशिव महाविष्णु, और जोर से गरज के बोलते हरि हरि। आपकी आवाज़ से लग रहा है 3 दिन से उपवास रखा है आपने, अभी जोर से बोलिए हरि 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 हरि। अद्वैत आचार्य विश्वरूप से इतना खुश रहते, कभी कभी अद्वैत आचार्य घर में राधा कृष्ण की आरती कर रहे होते, इतने विश्वरूप आए आरती को छोड़ देते और विश्वरूप को गले मिलके उनका स्वागत करते और सारे वैष्णव गाते हरि हरि। आपको मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि एक बहुत खतरनाक चीज है ये हरि का नाम। अगर ये आपने हरि का नाम सच्चे दिल से लिया ना सीरियसली, तो आपके सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, जो इतने मेहनत कई जन्मों से आपने पाल के रखे हैं, सारे दुख पाप इवन परिवार की आसक्ति भी छूट जाएगी। हाँ भगवान प्रभु, आप भूल जाओगे कौन है मेरे फैमिली मेम्बर्स, आप राधा श्याम सुंदर के प्रति पागल हो जाओगे, ब्रह्मचारी अपने लॉकर का नंबर भूल जाओगे। तो इसलिए हरि का नाम सच्चे दिल से मत लेना, सिर्फ जोर से बोलना हरि 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 हरि। कल भक्ति विनोद ठाकुर का, कल था या परसों था, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि, घर में रहो या जंगल में रहो हमेशा बोलो हरि हरि। बलराम हॉल ठाको कृष्णा हॉल ठाको बोलो हरि हरि। चाहे निर्जला उपवास रखो या 56 भोग खाओ, क्या बोलो हरि 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 हरि। कोई मजाक नहीं बोलता है हरि अप हरि अप, इंग्लिश में हरी अप मतलब जल्दी करो, उसमें भी हरी का नाम है जब। तो हमेशा बोलना है हरी 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 हरी। तो अद्वैत आचार्य और विश्वरूप के संग से सबको लाभ हो रहा था। और एक दिन शशि माता सोचने लगी कि मेरा बेटा विश्वरूप ये ज्यादा ही भक्तों का संग कर रहे हैं ना, हमें डर लग रहा है कहीं ये घर छोड़ के चला नहीं जाए, हमें कुछ तो इसको घर में रखने के लिए करना होगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि विश्वरूप का विवाह करा देंगे। जैसे विश्वरूप को पता चला कि मेरे विवाह की योजना बन रही है, उसी रात को वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया आज के दिन। और संन्यास के बाद उनका नाम हो गया शंकरारण्य स्वामी। वो पूरे भारत में घूमने लगे और घूमते घूमते अंत में वो कहाँ पर पहुंचे, पंढरपुर। पंढरपुर में दिव्य धाम में, जहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर निर्माण किया, पंढरपुर में भगवान विट्ठल जी का दर्शन किया और फिर अपनी इच्छा से समाधिस्थ हो गए, वापस भगवत धाम चले गए। तो विश्वरूप जब चले गए तो जगन्नाथ मिश्र चची माता जोर जोर से रोने लगे, विश्वरूप कोथा गेला, मेरा बेटा विश्वरूप कहाँ चला गया। और जगन्नाथ मिश्र के रिश्तेदार बोले, आप चिंता मत करो, अगर घर में कोई एक बेटा सन्यासी बन जाता है तो कई सारे पीढ़ियों का, उसके पिता, पिता के पिता, 6 लाख 60 लाख पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, 60 लाख पूर्वज वैकुंठ चले जाते हैं अगर एक बेटा सन्यासी बन जाए। गौरांगा इस तरह से उनको समझाने लगे। तब जगन्नाथ मिश्र फिर भी रो रहे थे और सब बोले, आप घबराओ मत, कम से कम एक बेटा तो अभी यहाँ है, विश्वंभर तो आपके साथ में है। और जगन्नाथ मिश्र ये सुनने के बाद जवाब दिए, इसका भी क्या भरोसा कि ये भी इस्कॉन में नहीं चला जाए ना। एक बार मैं जब पुणे में, हमारा एक कैंप होता है गौरंग सभा कैंप, जो विद्यार्थी ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनके लिए लेक्चर था, तो एक ब्रह्मचारी ने हाथ ऊपर किया, बोले प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी माँ बहुत रोती है तो मैं क्या करूँ। मैंने बोला, बहुत ठीक है, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी माता शची माता भी बहुत रोई थी, तो आपकी माता शची माता की परंपरा में है और आप निमाई की परंपरा में चले। माता पिता को दुख तो होता है लेकिन फिर 5 साल बाद 10 साल बाद उनको खुशी होती है कि हमारा बेटा सन्यासी हो गया। तो विश्वरूप के जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र बोले, हे कृष्ण, आपने एक पुत्र ले लिया, दूसरे पुत्र को भी आप पता नहीं लोगे कि मेरे साथ रखोगे। हे कृष्ण, निमाई ने महाप्रभु को, निमाई ने पिताजी को समझाया, भाला हैला विश्वरूप सन्यास को लीला, बहुत अच्छा हुआ विश्वरूप ने सन्यास लिया, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धार करीला, माता के कुल, माता के पिता, पिता के माता, माता के पिता के मिता पिता, ये सब पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और फिर जगन्नाथ मिश्र को थोड़ा सा होश आया और जो भी ये कथा को सुनते हैं, विश्वरूप ने संन्यास लिया, उसके सारे कर्मों के बंधन कट जाते हैं। इनडायरेक्टली बोला है, वो भी सन्यासी बन जाता है। सन्यासी मतलब आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर अगर शुद्ध भक्ति अभ्यास कर रहे हैं तो सन्यासी से भी ऊपर है। एक दिन अचानक निमाई के पिताजी लेटे हुए थे और उनको सपना आया और उठ गए, नहीं कृष्णा, ओ कृष्णा, नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, शशि माता ने पूछा। बोले, मैंने सपना देखा कि हमारा दूसरा बेटा निमाई, उसने भी हेड शेव कर दिया, वो भी भगवे कपड़े पहन लिए हैं और वो लाखों लोगों को जगन्नाथपुरी ले जा रहे हैं और सब उत्साह से डांस कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सची माता बोली, घबराओ मत, हमारा बेटा तो पढ़ाई से इतना आसक्त है, वो घर छोड़ के नहीं जाएगा। एक दिन निमाई को सपना आया, निमाई बोले, पापा मुझे एक स्वप्न आया। क्या हुआ? मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप मुझे बुला रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप भी आ जाओ। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं घर में रहूंगा, मैं माता पिता की सेवा करूंगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तब विश्वरूप ने बोला, ठीक है, आप घर में रहिए और माता पिता को मेरा प्रणाम देना। तो इस तरह से विश्रु के संन्यास से क्या हुआ कि शची माता जगन्नाथ मिश्र को लगा कि विश्वरु बहुत किताबें पढ़ता था, इसलिए वो सन्यासी बन गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि निमाई की पाठशाला बंद कर देंगे, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। तो उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे, पढ़ाई नहीं करेगा तो सन्यासी भी नहीं बनेगा। शची माता बोली, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पढ़ाई बंद करेंगे तो फिर अनपढ़ रहेगा, और कौन अपनी बेटी का विवाह एक अनपढ़ मूर्ख के साथ करना चाहेगा। ये पहली चीज लोग पूछते हैं क्या डिग्री है, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र शची माता को बोले, आप पढ़े लिखे ब्राह्मण की मूर्ख पुत्री हो, देखो ये जो विवाह है ये कृष्ण निश्चय करते हैं, पढ़ाई का धन से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण हैं और वो भिक्षुक हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, और इतने सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं उसको अंगूठा छाप है, उनके यहाँ पे लाइन लगी होती है, पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। हमारा बेटा अनपढ़ रहे, मूर्ख रहे, घर में तो रहेगा, पढ़ाई लिखाई करके अगर वो सन्यासी बनता है उससे चाहे घर में रहे। तो निमाई को बोला, निमाई कल से पाठशाला बंद। आज साधारण व्यक्ति तो बहुत खुश होगा, नहीं पाठशाला बंद, लेकिन निमाई को बहुत बुरा लगा, उन्हें मस्ती करना शुरू किया, बर्तन तोड़ना शुरू किया। रात में दो मित्र एक बैल की तरह कंबल डाल के जाते और पेड़ हिला देते, फल गिरा देते, और कभी कभी दरवाजा बाहर से बंद कर देते। और प्रॉब्लम क्या होगा सुबह उठने के बाद, उस जमाने में वॉशरूम अंदर नहीं होते थे, टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता था। और फिर जब सुबह उठा तो खोलो खोलो, दरवाजा खुला कि नहीं अभी तक किताब में लिखा नहीं है। निमाई बहुत मस्ती करने लगे। एक दिन कुछ रिजेक्टेड पॉट्स थे, पुराने बर्तन मिट्टी के, उसके ढेले के ऊपर निमाई बैठ गए, और जो 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 पॉट्स की जो काली जो सूट होती है वो उनके गले पे लगी थी, माथे पे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और शची माता, कोई माताओं ने बोला, ए निमाई ये क्या कर रहे हो। शची माता, देखो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। शची माता, निमाई नीचे आओ नीचे आओ, ये कहाँ गंदी जगह बैठे हो। माँ अगर मैं पाठशाला में नहीं जाऊँगा तो मालूम कैसे पड़ेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, स्वच्छ क्या है गंदा क्या है। और हे माता आप जानते नहीं हो ये सब परम पवित्र है, सब कुछ एक। वो दत्तात्रेय के भाव में आ गए। अरे माता तुम जानते नहीं हो कोई अपवित्र चीज भी हो अगर मेरे संपर्क में आ गया तो पवित्र हो गया। वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर सब ने बोला, निमाई नीचे आओ नीचे आओ। बोले नहीं पहले मेरी पाठशाला शुरू करो। तो सबने बोला, आप नीचे आ जाओ, अगर पाठशाला नहीं शुरू है तो कल फिर चढ़ जाना। सब नीचे आ गए। और रात को जगन्नाथ मिश्र लौट के आए, सारे नवद्वीप के लोगों ने बोला, तुम्हारा बेटा पढ़ाई करना चाहता है, क्यों रोक रहे, हमारा बेटा नहीं पढ़ते, हम जबरदस्ती कोचिंग कराते हैं उसको, और आपका बेटा पढ़ना चाहिए, किस मूर्ख ने आपको बताया है, और आप बोल रहे हो कि सन्यासी बन जाएगा इसलिए। लेकिन जान लो अगर कर्मों में लिखा है तो बिना पढ़े भी वो सन्यासी बन सकते। तो जगन्नाथ मिश्र बोले, आप सब मेरे हित चिंतक हो, अगर आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अनिमाई को बुलाया, बोला कल से पाठशाला शुरू। अभी समय हो रहा है, मैं सिर्फ दो मिनट में सबसे इम्पोर्टेंट कहानी बताऊंगा कि ये जो सन्यास की लीला से एक नेगेटिव चीज़ हो गई वो क्या हुआ कि शची माता का अपराध। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में है, विष्णु के आसन पर बैठे हैं, सबको जो चाहिए दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, मुरारी गुप्ता को, श्रीधर खोला बेचा को, हरिदास ठाकुर को, अद्वैत आचार्य को, लेकिन शची माता को नहीं बुला रहे। श्रीवास ठाकुर को बहुत दुख लगा। श्रीवास ठाकुर बोले, प्रभु ये क्या बात है, आप शची माता को क्यों नहीं कृपा कर रहे। तो बोले, उनको कृपा नहीं मिलेगी, क्यों, उसने अपराध किया है। शची माता ने अपराध किया किसके प्रति, विश्वरूप के प्रति। क्या अपराध किया शची माता ने, कुछ का फेसबुक पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं डाला था, खाली मन में अपराध। ये अद्वैत है ना, ये द्वैतमय है, ये कपटी है, इसने मेरे एक बेटे को छीन लिया, शायद दूसरे को भी ले जाएगा। इस तरह से मानसिक अपराध, मानसिक अपराध का भी इतना फल होता है कि महाप्रभु अपनी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे। यानी भगवान इम्पार्शियल है। दुनिया में क्या होता है, कोई मिनिस्टर होगा तो पहले अपने माता पिता बेटे बेटी का सब फैसिलिटी दे देंगे। महाप्रभु बोले, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो शची माता को एक ही तरीका बताया गया कि अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, अद्वैत आचार्य की चरणों की धूल लेनी होगी। तो अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य के पास सारे भक्त गए और बोले, अद्वैत आप आपके चरणों की धूल से, किसके लिए? शची माता के लिए। अद्वैत आचार्य, शची माता? शची माता जगत की माता है, ये देवकी है, ये वही कौशल्या है, ये शोला है, ये वही है जिसके घर में निमाई 13 महीने के लिए रहे, ये अदिति है, ये पृष्णी है, ये जगत की माता है, वंदनीय है। ऐसी माता को मैं अपनी चरण की धूल कैसे दे सकता हूँ? ऐसे शची माता का गुणगान करते करते अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए। अब भक्तों ने तुरंत चरणों की धूल ले ली, शची माता को लगा दी, शची माता धूल प्राप्त करके वो भी बेहोश हो गए। अरे कहानी सुन के आप सब भी होश में आ गए। तो मतलब ये लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि महापुरुष दिखाते हैं कि शूल पान समय यदि वैष्णव निंदा करे, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी भी हों, अगर वो वैष्णव निंदा करते उनका पतन हो जाता। मेरी माँ यशोदा माता, कौशल्या जो शची माता के रूप में आए हैं, अगर वो भी निंदा कर रहे हैं, ये मानसिक भी, तो उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब तात्पर्य यह है कि हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी वैष्णव को जज नहीं करो। कभी कभी क्या होता है, हम समझ नहीं पाते। हमने कई बार देखे, हम सोचते हैं कि जैसे कोई वैष्णव ने कुछ किया है, हमको लगता है कि ये कारण है, कारण कुछ और ही हो सकता है, है ना? तो बेस्ट है कि अपने आप के दोष देखो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, मैं दूसरों में दोष देखता हूँ क्योंकि मेरे अंदर दोष है। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि एक सीव और नीडल, सीव जानते हैं छाननी, जो छानने के लिए होते हैं ना, गेहूँ छानने के लिए, या तो उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत सारे होल हैं, और एक नीडल है, सुई है। तो छाननी जो सुई को देख कर बोल रही है, देखो तुम्हारे अंदर छेद है, तुम्हारे अंदर छेद है, उसको मालूम नहीं उसके अंदर 1000 छेद हैं। मैं दूसरों में छेद देख रहा हूँ, इसमें दोष है, इसमें दोष है, लेकिन मेरे अंदर ही दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दो चीज़ें करो, भगवत धाम जाना निश्चित है। कितने लोग जाना चाहते हैं भगवत धाम? अभी मत जाना, कुछ साल सेवा करके जाना। दो चीज़ें करना, एक वैष्णव की निंदा मत करो, वैष्णव की सेवा करो, निंदा मत करो, और सेवा नहीं कर सकते कम से कम निंदा मत करो। और दूसरा, सच्चे दिल से भगवान का नाम पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर ये दो चीजें कर लेता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो आज एंड में सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान राधा श्याम सुंदर से कि ये जो विश्वरूप का संन्यास, प्रभुपाद का संन्यास का हम लाभ उठाएं, हम सच्चे दिल से हरि नाम लें, सच्चे दिल से हम भी संन्यास लें, मतलब काया मन वचन भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में अर्पण करके शुद्ध हरि नाम ले सकें। कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की। कोई प्रश्न या कॉमेंट है? आई थिंक ऑलरेडी समय हो रहा है। थैंक यू। हरे कृष्ण, एक बार और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और हाँ, एक 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 सीरियस अनाउंसमेंट है कि सबको वो डोनेशन देना है जो आपने प्रॉमिस किया है। हर वर्ष 2 माला या कम से कम 1 माला बढ़ाते रहिए, और आज से शुरू करेंगे। हरि बोल।